सम्राट अभी भी कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा था और डार्क चेहरे के साथ वहीं खड़ा होकर सारी चीजों पर गौर कर रहा था। और फिर अचानक वो बुदबुदा रहा था, अरमान सिंघानिया की बीवी डार्क विला में कैसे आ सकती है? जैसे ही सम्राट ने ये बात मन ही मन दोहराई, उसकी आंखों के सामने राजवीर खड़ा हो गया था। राजवीर ने तुरंत ही सम्राट को गहरी नजरों से तिरछी नजर डालकर देखा और फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। राजवीर की सनकी और खतरनाक हंसी देखकर संजना पूरी तरह कांपने लगी थी। वो पूरी तरह सहम गई थी। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तक के चेहरों से पसीना छूटना शुरू हो गया था। वहीं सम्राट बिना किसी इमोशन के राजवीर को देख रहा था। सम्राट का चेहरा इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो कि उसका सब कुछ लुटपिट गया हो। तभी राजवीर हंसते हुए बोला था, वो तू यहां पर उस आस्था को लेकर आया था, राइट? जैसे ही राजवीर ने यह कहा, सम्राट हैरानी से बोला था, आपको आस्था का नाम कैसे पता चला? तभी राजवीर आगे बढ़ा और अपनी चार उंगलियां तुरंत ही सम्राट के माथे पर मारकर बोला था, क्योंकि वो आस्था वही लड़की है जिसे तूने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, वही लड़की जिसे तू क्लब में मिलने गया था और जिसे तूने मुझे बिना बताए अपनी बेवकूफ़ी में यहाँ डार्क विला में बुलाया था। वो आस्था अरमान सिंघानिया है, अरमान सिंघानिया की बीवी। अब जैसे ही राजवीर ने यह कहा, सम्राट को तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। अभी तक वो अपने आप को इस बात का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सीधे सीधे अपने गुरुजी के मुंह से ये सुनकर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह की बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जिस लड़की पर उसे क्रश हो गया था, जिसके साथ वो अपने बेड के सपने सजा रहा था, भला वो लड़की किसी और की कैसे हो सकती थी? और वो भी अरमान सिंघानिया की बीवी? भले ही उसके दिमाग में ये बात कबूल कर ली थी, लेकिन उसका दिल अभी तक ये बात कबूल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने एक और कोशिश की और अचानक उसके मुंह से तेज आवाज में निकला था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी, आस्था अभी कॉलेज में पढ़ रही है, मैंने उसकी पूरी तहकीकात करवाई है, तो भला उसका अरमान सिंघानिया से क्या लेना देना, और वो तो पहली बार इतने बड़े घर में आई थी, उन लोगों को अपने देखा नहीं था, कॉलेज के बच्चे थे वो सब। अब ये सब सुनकर राजवीर का दिल तो चाहा कि आगे बढ़कर सम्राट का गला दबा दे, उसने तुरंत उसके गले पर अपना हाथ रख दिया था, लेकिन सम्राट ने ना तो पलक झपकी और ना ही अपने गले से किसी भी तरह की कोई आवाज निकलने दी। उसने राजवीर का हाथ हटाने की भी कोशिश नहीं की। राजवीर ने पूरी ताकत से उसका गला दबाया था, लेकिन सम्राट की पलकें तक नहीं झपकी थी। सम्राट के इस तरह के पागलपन भरे बर्ताव को देखकर एक पल के लिए संजना को ऐसा लगा मानो उसका ही गला घुट रहा हो। उसकी आंखों में पूरी तरह से खून उतर आया था और जब लगने लगा कि अब उसकी जान जाने वाली है, तभी जाकर राजवीर ने उसे छोड़ दिया। फिर वो बोला था, पागल बना दिया तुझे सम्राट अरमान सिंघानिया की बीवी ने, तू अरमान सिंघानिया का मुकाबला क्या करेगा? तू तो उसकी बीवी का तक मुकाबला नहीं कर पाया और चला है उससे ज्यादा श्रेष्ठ बनने, तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ कभी हो ही नहीं सकता। ये बोलकर राजवीर अब सम्राट को पूरी तरह से चिढ़ाने लगा था, फिर गुस्से से बुदबुदाते हुए अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा, आखिरकार आस्था सिंघानिया का मेरी बीवी से क्या नाता था, इसके बारे में पता लगाना ही होगा। ये सोचकर उसने तुरंत अपने कुछ आदमियों को एक्टिव कर दिया था। वहीं सम्राट हॉल में हैरानी से बैठा हुआ था। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुमने देखा नहीं कि जब वो गुरुजी की बीवी को बाहर लेकर जा रहे थे, तुम लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? तभी सिक्योरिटी गार्ड ने सर झुकाकर जवाब दिया था, सर आपने ही मना किया था कि हमें उन लड़कियों की ओर नहीं देखना है, इसलिए हमने अपना सर झुका कर रखा था और हमने उन लड़कियों को देखा ही नहीं। अब ये सुनकर सम्राट को अचानक वो पल याद आ गया जब आस्था ने बड़ी नजाकत से उससे कहा था कि उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे थोड़ा अजीब लग रहे हैं, वो उसकी तरफ देख रहे हैं, इसलिए वो ठीक से खा भी नहीं पा रही। आप प्लीज इन्हें खाने के लिए भेज दीजिए या फिर थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लीजिए। अब सम्राट को सारी बातें समझ में आ चुकी थी और अचानक ही सम्राट जोर जोर से हंसने लगा था। उसकी खतरनाक और जानदार हंसी पूरे के पूरे डार्क विला में गूंज उठी थी, मानो पूरा विला उसकी हंसी से कांप उठा हो। वहीं संजना अपने कमरे में आ चुकी थी। डायरेक्ट मिल में उसने एंट्री तो ले ली थी, लेकिन दोनों सिंहों और उन पागलों को इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी हंसते हुए देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। वो सोचने लगी थी कि अब ये लोग क्या करेंगे। वो तो यहाँ सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि आस्था की जान ले सके, लेकिन अकेले आस्था की जान लेना उसके बस की बात नहीं रही थी, और आस्था की जान लेने के लिए अगर उसे किसी की जरूरत पड़ती तो उसे सम्राट और राजवीर की ही जरूरत पड़ती, क्योंकि उसके पिता ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। भले ही उसके पिता ने कितनी सारी जायदाद उसके लिए छोड़ रखी हो और उसे एक और दौलत का पता भी बता दिया हो, लेकिन संजना ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अगर उसे अरमान को हराना है और आस्था को अपने रास्ते से हटाना है तो उसे हर हाल में उन दोनों पागलों का साथ चाहिए, और उसके लिए वो इन दोनों का पागलपन और सनकीपन भी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार। सम्राट अचानक हंसते हंसते वहां से उठा और सीधे सीधे संजना के कमरे में आ गया। वहीं दूसरी ओर आस्था को अरमान का इंतजार करते करते काफी देर हो चुकी थी। कमरे में हल्की सी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर रात गहराती जा रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को धीमे धीमे हिला रही थी, मानो रात भी किसी अनजाने रहस्य को अपने भीतर समेटे बैठी हो। आस्था कई बार दरवाजे की ओर देख चुकी थी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर अरमान अब तक वापस क्यों नहीं आए। कुछ देर पहले तक उसका दिल बेचैनी से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पूरे दिन की थकान उसके शरीर पर हावी होने लगी थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी नजरें अपने बेटे पर डाल दी, जो उसके पास ही मासूमियत से सो रहा था। बच्चे के चेहरे पर फैली मासूम शांति को देखकर आस्था के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। उस छोटे से चेहरे को निहारते हुए उसकी आंखों में एक पल के लिए सुकून उतर आया। सब ठीक हो जाएगा, उसने मन ही मन खुद से कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी बेचैनी अब भी बाकी थी। आखिर आज का दिन बहुत अजीब रहा था। प्रियंका की हालत, परिवार की घबराहट और सबसे बढ़कर अरमान का अचानक इस तरह आस्था का हाथ सबके सामने पकड़ना, सबके सामने खुद के करीब करना, इन सब बातों ने उसके मन में कई अनकहे सवाल छोड़ दिए थे। वो सोच ही रही थी कि शायद अरमान अभी थोड़ी देर में कमरे में आ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ उसने धीरे से तकिए पर सिर टिका दिया। उसकी आंखें अब भारी होने लगी थीं। पूरे दिन की भाग दौड़, चिंता और भावनाओं के तूफान ने उसके शरीर को पूरी तरह थका दिया था। उसने आखिरी बार अपने बेटे को प्यार से देखा, उसके माथे को हल्के से चूमा और आंखें बंद कर ली। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ ही पलों में गहरी नींद ने आस्था की पलकों पर अपना पहरा जमा लिया। वहीं दूसरी ओर सम्राट संजना को लाल आंखों से देखते हुए वो बोला था, तुम्हें कैसे पता चला कि वो अरमान सिंघानिया की बीवी आस्था सिंघानिया है? तभी संजना ने नफरत से कहा था, ये वही लड़की है जिससे मैं बचपन से नफरत करती आई हूँ, तो भला मैं उसे कैसे नहीं पहचानूंगी? और वैसे भी सम्राट जी, वो आपको बेवकूफ बनाकर चली गई है, आपको चूना लगाकर चली गई है, तो आपको इस बात को कबूल कर लेना चाहिए और इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जैसे ही संजना ने ये बात कही, सम्राट अचानक आगे बढ़ा और उसने संजना के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर बुरी तरह से टूट पड़ा। संजना को काफी दर्द हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उसे रोकने की कोशिश की और सम्राट को देखते हुए वो बोली, सम्राट आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सच बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत करेंगे। आपको मेरे साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। लेकिन उस वक्त सम्राट को देखकर संजना को ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर पागलपन का कोई काला साया छा गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हर हाल में आज संजना के साथ सारी हदें पार कर देना चाहता था। संजना जितनी बार उसे अपने पास से हटाने की कोशिश करती, उतनी ही बुरी तरह से सम्राट फिर से उसके करीब आ जाता। वो बार बार उसके होठों को चूमने की कोशिश कर रहा था और उसके कंधों और गर्दन को कसकर पकड़ लेता था, मानो अचानक उस पर अपना हक जता रहा हो। संजना बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सम्राट की पकड़ और उसकी सनक दोनों ही हर पल और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसके व्यवहार में एक अजीब सी बेकाबू बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। संजना की आंखों में गुस्सा, बेबसी और डर तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक पल ऐसा भी आया जब संजना ने उसे रोकने की कोशिश करना बंद कर दिया। वो समझ चुकी थी कि इस सनकी और पागल इंसान से वो आज किसी भी कीमत पर खुद को बचा नहीं पाएगी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए गहरी कड़वाहट और दर्द की छाया उभरी, मानो वो मन ही मन कोई बहुत बड़ा फैसला ले चुकी हो। कमरे में अब सिर्फ भारी सांसों की आवाज और उस पल का बोझिल सन्नाटा रह गया था जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। अब सम्राट ने बड़ी बेरहमी से उसके कपड़ों को उसके शरीर से फाड़कर अलग कर दिया और उस पर पूरी तरह से टूट पड़ा। सजन अब उसे खुद से दूर करने के बारे में केवल सोचती ही रह गई थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सम्राट ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा संजना के वजूद पर उतारना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे आस्था को लेकर उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था, वो सब वो संजना पर उतार रहा हो। उसकी आंखों के सामने बार बार आस्था का चेहरा और उसकी पतली कमर घूम रही थी। सबसे बड़ा पछतावा उसे यही हो रहा था कि आस्था के इतने करीब होकर भी वो उसे पा नहीं सका। आस्था की खूबसूरत पतली कमर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और वो चाहकर भी उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसे इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा था कि वो आस्था को अपने घर तक लेकर आया था, यहाँ तक कि अपने बेडरूम में भी ले आया था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वैसा कुछ नहीं कर पाया जैसा वो चाहता था। सम्राट के मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अगर उस समय उसने थोड़ा भी चालाकी से काम लिया होता, अगर उसने पहले ही सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया होता, तो शायद आज हालात कुछ और होते। वो सोच रहा था कि अगर उसे पहले से पता होता कि आस्था अरमान सिंघानिया की पत्नी है, तो वो किसी भी कीमत पर उसे अपने हाथों से जाने नहीं देता। वो उसे अपने पास ही रोक लेता और इतनी मजबूती से अपने जाल में फंसा लेता कि कोई भी उसे उससे छुड़ा नहीं पाता। इन सब ख्यालों ने उसके अंदर के गुस्से और पागलपन को और भी भड़का दिया था। कहीं ना कहीं आस्था को पाने की अधूरी चाह, उसका अहंकार और उसका गुस्सा सब मिलकर उसके अंदर एक खतरनाक तूफान खड़ा कर चुके थे, और उसी तूफान में डूबा हुआ सम्राट अपनी सारी कुंठा और फ्रस्ट्रेशन संजना पर उतार रहा था। मानो वो उसे नहीं बल्कि अपने अंदर भरे उस अधूरे गुस्से को सजा दे रहा। लेकिन सम्राट ने अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन, पूरा गुस्सा और सारी उलझन संजना के शरीर पर उतारना शुरू कर दिया था और उसके साथ पूरी तरह से अंतरंग हो गया। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों, और सुनते रहिए पॉकेट FM।